नमस्कार, स्पोर्ट्सकैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्सकैन के आज के संस्करण में मैं हूं करिश्मा राय और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन जी। उत्तरा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद करिश्मा।
तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल T20 क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में भारत ने टीम स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण पदक जीते। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 3 पदक पक्के और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में सर्वाधिक स्वर्ण पदक के साथ कर्नाटक बना ओवरऑल चैंपियन। तो आईपीएल T20 क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं। और इसी के साथ उत्तरा जी, जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है इसमें काफी भरोसा जताया जा रहा था संजू सैमसन पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब जो गेम है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए, संजू से उम्मीदें इसलिए बहुत ज्यादा थी क्योंकि जिस तरह से उन्होंने विश्व कप में प्रदर्शन किया था तो ये उम्मीद की जा रही थी कि वो उसी फॉर्म को, उसी मोमेंटम को लेके आगे चलेंगे। पर इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है और हो सकता है कि थोड़ा सा अभी वो एडजस्ट कर रहे हों। एक नई टीम है, नया सेटअप है और चेन्नई हमेशा से बहुत अलग तरीके से काम करने वाली एक टीम रही है। तो राजस्थान से जब वो आ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कोई नए खिलाड़ी हैं या इस टीम में ऐसा कोई है जो बहुत अलग तरीके से सोचता हो, पर उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा सेटअप में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो। पर अच्छी चीज ये है कि आयुष मात्रे बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। पिछला मैच जिस तरह से CSK का गया था उससे काफी लोगों को ये डाउट हो रहा था कि शायद CSK अब उस लेवल की टीम नहीं बची है, खास करके जब शुरू होने से कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि धोनी 2 हफ्ते के लिए बाहर होंगे। हालांकि पिछले कुछ सालों में एज अ प्लेयर उस तरह से उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है टीम में और कप्तानी भी पिछले 2 सीजन से वो नहीं उस तरह से कर रहे हैं। पर धोनी जिस लेवल के प्लेयर हैं वो जब आपके ड्रेसिंग रूम में रहते हैं तो माहौल अलग होता है। आपके पास एक समझाने वाला आदमी होता है, एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है जो आपको बता सकता है कि क्या सही है क्या गलत जा रही है चीजें। तो मुझे लगता है उन चीजों में, उस मेंटोरशिप वाले रोल में शायद जरूर उनको फर्क पड़ रहा है। पर अच्छी चीज ये है कि घर पे खेल रहे हैं, पिछला मैच घर पे नहीं खेले थे, बाहर खेले थे तो बहुत खराब प्रदर्शन था इनका। कमबैक बहुत जरूरी था और अगर पिछले साल घर पे इनके बहुत खराब मैचेस गए हैं तो उम्मीद यही करेंगे कि इस साल सीजन थोड़ा सा बेटर हो और अगर पहला ही मैच घर पे वो अच्छा खेलते हैं और अगर जीत पाते हैं तो शायद ये पिछले मैच से ऑलरेडी उनका बेटर प्रदर्शन हो जाएगा CSK का चेपॉक में।
बिल्कुल, अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स के लिए हमेशा देखा गया है कि शुरुआती जो मैच होते हैं उनके बहुत अच्छे जाते हैं लेकिन अंत में आते आते कहीं ना कहीं टीम का जो प्रदर्शन होता है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। तो इस बार पंजाब किंग्स की रणनीति क्या होगी?
देखिए, ये पहले होता था, पिछले 1-2 साल से थोड़ी सी चीजें बदली हैं, खास करके श्रेयस की कप्तानी में एक अलग टीम देखने को मिल रही है। थोड़ा सा ज्यादा अटैकिंग और पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं वो। जैसा पहले होता था थोड़ा सा कंफ्यूज टीम नजर आती थी पंजाब की, वो पिछले 1-2 सीजन से नहीं है उतनी। हमने पिछले मैच में भी देखा, एक पॉइंट पर लग रहा था कि शायद मैच उनके हाथ से निकल जाता, पर वो नहीं हुआ। उन्होंने मैच संभाल के जो खिलाड़ी हैं वो लेके गए आगे। हालांकि गेंदबाजी थोड़ी सी ढीली थी पिछली बार भी उनकी, पर बैटिंग ने उनको बचा लिया। और अच्छी चीज ये है कि इस बारी जो डाउट चल रहा था कि शायद श्रेयस नहीं खेल पाएंगे क्योंकि पिछले मैच में उनको इंजरी हुई थी फील्डिंग करते हुए, तो वो एक अच्छी चीज है कि उनके कप्तान वापस आए। तो पिछले 1-2 सीजन से पंजाब एक अलग तरीके की टीम खेल रही है, तो मुझे लगता है वो जो आखिरी फेज में आके जो टीम का मोमेंटम खत्म हो जाना वाली बात है, वो अब उस तरह से नहीं बची है और वो आपको उनके सारे खिलाड़ियों के ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आता है, काफी पॉजिटिव टीम नजर आती है आपको पहले के मुकाबले।
बिल्कुल, अगर इससे पहले कल हुए मुकाबले की बात करें तो उसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन से हरा दिया था। ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद ने 8 विकेट खोकर 226 रन बनाए। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की पूरी टीम 16 ओवर में 161 रन बनाकर ही सिमट गई थी। तो कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार दूसरी बार हारी है, तो इस हार को आप कैसे देखते हैं और उनके लिए ये मुकाबला कितना टफ था?
देखिए 200 के ऊपर हालांकि अब जिस तरह से टीमें चेस करती हैं तो 226 ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल होता, पर मुश्किल हमेशा रहता है 200 के ऊपर जब जाता है T20 में। और कोलकाता की टीम थोड़ी सी जो हम बाकी टीमों की अभी बात कर रहे थे CSK की या पंजाब की, वो कोलकाता में दिख रहा है आपको उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन, ऐसा कोई एक आपको वो खिलाड़ी नहीं दिख रहा है जिसको देख के आप कहें कि ये मैच बदल सकता है आपका पूरा का पूरा। उनके पास रिंकू सिंह है अभी भी, पर वो अभी उस तरह के फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। तो अजिंक्य रहाणे अच्छा खेलते हैं पर वो भी नहीं चल पा रहे हैं, पिछले कुछ समय से नहीं चल पा रहे हैं वो, बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उस तरह का नहीं रहा है। तो कोलकाता की टीम गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में थोड़ी सी आपको ढीली दिख रही है। उनके पास यंगस्टर्स हैं जिनके पास पोटेंशियल है, काफी अंडर 19 वाले खिलाड़ी हैं उनके पास, अंकरिश रघुवंशी हैं उनके पास, अनुकूल रॉय हैं जो लगातार इंजरी के चक्कर में बाहर रहे हैं, अंडर 19 की टीम का हिस्सा रह चुके हैं भारत की, पर कोई एक ऐसा आपको खिलाड़ी नहीं है जिसको आप कहें कि ये एक्स फैक्टर है और पूरी तरह से गेम अपने दम पे बदल सकता है। जैसा मैंने कहा ले दे कि शायद रिंकू सिंह वो खिलाड़ी हो सकते हैं, पर अभी उस तरह से वो नहीं चल पा रहे हैं, तो थोड़ा सा कोलकाता को देखना पड़ेगा कि किस तरह से है। कैमरन ग्रीन उनके पास हैं जिनके ऊपर लगातार अब उसको लेकर थोड़ा सा विवाद भी चल रहा है कि वो गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कुछ और बोल रही है, टीम कुछ और कह रही है। कल हमने देखा कि रन आउट हुआ एक, जिसमें आपको समझ नहीं आया कि कैमरन ग्रीन को क्यों वापस बुलाया गया। तो जो एक कंफ्यूजन है या एक टीम है जो थोड़ा सा डाउट में खेल रही है, जिनको ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, वो शायद कोलकाता की ही टीम है अभी।
बिल्कुल, बढ़ते आगे बात विश्व तीरंदाजी की कर लेते हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। थाईलैंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में महिला टीम कंपाउंड फाइनल में शीतल देवी और पायल नाग ने कजाकिस्तान को 150-147 से हराया। वहीं पुरुष टीम स्पर्धा में टोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने भारत को ताइपे के खिलाफ 153-146 की शानदार जीत दिलाई, जबकि मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा में शीतल देवी और टोमन कुमार ने इंडोनेशिया को 153-146 से हराकर 3 दिन का तीसरा स्वर्ण पदक भी हासिल कर लिया। तो एक अच्छी खबर निकल के आ रही है तीरंदाजी से, जहां 3 स्वर्ण पदक खाते में।
बिल्कुल, और अगर हम इसको एशियन गेम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो पैरा एशियन गेम्स होंगे उसके लिए और भी अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले पैरा एशियन गेम्स में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था हमारे तीरंदाजों का। शीतल देवी ऑलरेडी सबको पता है कि वो वर्ल्ड क्लास हैं अपनी कैटेगरी में, और जो बाकी भी खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं वो ज्यादा अच्छा और प्रदर्शन करें, क्योंकि यहां से एक तरह से अभी हमारे पास शायद मुश्किल से 6-8 महीने ही बचे हैं एशियन गेम्स के लिए। तो हर जीत जो है, हर अच्छा प्रदर्शन जो है, वो कॉन्फिडेंस देगा और थोड़ा सा भारतीय टीम को भी क्लैरिटी देगा कि कौन क्वालिफाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा फेज जो है, हर परफॉर्मेंस चाहे जिसमें मेडल ना भी आए तो भी जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर हम देखें, तो अभी से लेके अगले 6 महीने मुझे लगता है वो पैरा एशियन गेम्स के ही हिसाब से तैयारी के ही मद्देनजर देखा जाना चाहिए।
बिल्कुल, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत, जरीन, प्रिया और प्रीति पवार ने आज अपने अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, जिससे भारत के लिए कम से कम 3 पदक पक्के हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
मंगोलिया के उलान बातर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने आज महिला 51 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए फिलीपींस की शियान बाघिन को रोमांचक मुकाबले में मात दी। अब सेमीफाइनल में निखत का मुकाबला पेरिस 2024 ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता चीन की वो यू से होगा। वहीं महिला वर्ग में 60 किलोग्राम में प्रिया ने चीन की चेंगयू यांग को 4-1 से हराया और टूर्नामेंट में अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखा। फाइनल में जगह बनाने के लिए उनका अगला मुकाबला मंगोलिया की नामून मेनखोर से होगा, जबकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की स्वर्ण पदक विजेता प्रीति पवार ने मंगोलियाई मुक्केबाज एन खजारगल को 5-0 से हराया। प्रीति सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया की इम एजी से भिड़ेंगी, जो पेरिस 2024 ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो उत्तरा जी, जिस तरीके से प्रीति पवार जैसी युवा खिलाड़ी भी आत्मविश्वास के साथ खेल रही हैं, और क्या लगता है कि भारत में अब जो बॉक्सिंग है उसके नए दौर की शुरुआत हो गई है, तमाम जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं?
देखिए, विमेन्स बॉक्सिंग में पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इंडियंस जो हैं। जो सवाल थे या जो डाउट्स थे वो मेन्स बॉक्सिंग को लेकर ज्यादा था, क्योंकि एक टाइम था जब भारत के जो बॉक्सर्स थे, मेल बॉक्सर्स जो थे, वो आपको वर्ल्ड लेवल पे लगातार प्रदर्शन करते हुए और जीतते हुए नजर आते थे। अब विमेन बॉक्सिंग में कम से कम ने वो बीड़ा एक तरह से उठा लिया है, क्योंकि मेंस में है जो उभरते खिलाड़ी आ रहे हैं, अभी हर कैटेगरी में आ रहे हैं, और कुछ पुराने भी हैं जो वापसी जो कमबैक कर रहे हैं। हुसामुद्दीन है यंगस्टर्स, मतलब पुराने बॉक्सर्स में, यंगस्टर्स में अविनाश है, दीपक हैं, विश्वनाथ हैं, तो ये लोग कर रहे हैं, पर अभी इनको टाइम लगेगा थोड़ा सा। उसके मुकाबले विमेन बॉक्सिंग जिस तरह से भारत की जा रही है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो या एशियन लेवल पे हो, मुझे लगता है कि हमारी ज्यादा उम्मीदें जो है वो वुमेन बॉक्सर्स से ही होनी चाहिए। निखत जरीन अपने आप को बहुत बार प्रूव कर चुकी हैं, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रिया पुनिया और प्रीति पवार लगातार जिस तरह से कर रही हैं प्रदर्शन, उन्होंने नेशनल्स में पहले किया, एशियन लेवल पे कर रहे हैं, और एशियन लेवल पे अच्छी चीज ये है कि यही सारे आपको दोबारा से एशियन गेम्स में फिर से मिलेंगे, तो इससे अच्छा आपके लिए एक प्रिपरेटरी टूर्नामेंट नहीं हो सकता था अपने ओपोनेंट्स को भी असेस करने का। चाइना सबसे बड़ा खतरा रहेगा, क्योंकि चाइनीज बॉक्सर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहां पे जो प्रदर्शन है वो बॉक्सिंग फेडरेशन को भी एक थोड़ी सी क्लैरिटी देगी इस बात को लेके कि आगे कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के हिसाब से टीम का चयन किस तरह से होना चाहिए।
बिल्कुल। बढ़ते आगे बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आज संपन्न हो गए। प्रतियोगिता में कर्नाटक ने 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। एक रिपोर्ट।
प्रतियोगिता में कर्नाटक के बाद ओडिशा 21 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं झारखंड 16 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा मेजबान छत्तीसगढ़ ने 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 9वां स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज पुरुष फुटबॉल का फाइनल मुकाबला हुआ। मुकाबले में पश्चिम बंगाल ने छत्तीसगढ़ को 0 के मुकाबले 1 गोल से पराजित कर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। वहीं तीरंदाजी के महिला वर्ग की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में झारखंड की कोमालिका बारी ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं रिकर्व टीम स्पर्धा का स्वर्ण नागालैंड की टीम ने जीता। पुरुष वर्ग की रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण उड़ीसा के अर्जुन खारा ने जीता। वहीं रिकर्व टीम स्पर्धा का स्वर्ण झारखंड ने अपने नाम किया। आज शाम रायपुर में आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मैरी कॉम और फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
तो एक अच्छा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ से भी ट्राइबल गेम्स से निकल के आया है, और कर्नाटक का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा,
और थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि जब हम देश में ट्राइबल की बात करते हैं तो जनरली छत्तीसगढ़, झारखंड, इसी ओडिशा, इन्हीं राज्यों की बात आपको लगती है, लेकिन इससे आपको समझ आता है कि जो ट्राइबल गेम्स हैं वो कितने इंक्लूसिव हैं, और ऐसी जगहों से भी आपको टैलेंट निकल के दिख रहा आता हुआ जहां पे आप उम्मीद नहीं करते हैं नॉर्मली।
बिल्कुल। और वहीं आपको बता दें कि सैफ अंडर टी20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में आज भारत और बांग्लादेश आमने सामने हैं। तो इसी के साथ श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खेल खबरों के साथ। उत्तरा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद,
नमस्कार।